Perdón. अच्छा, इसके बगैर भी चल जाएगा थोड़ा सा दूर में। अच्छा चलें, क्लास शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والذين جاء نہیں، صحابہ کرام کی کلاس کے لیے اسکار یاد کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. अच्छा, तो हम पिछली क्लास के अंदर फाइटिंग की बातें कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमने आप लोगों के सामने चॉइस रखी थी कि जी फाइटिंग की बातें करनी है कि जरा इल्मी बातें करनी है। तो कुछ बच्चों ने जो है वो फाइटिंग का को चूज किया था, और कुछ ने जो है वो फजाइल और इल्मी बातों को चूज किया था। तो हमने फिर छोटों की लिहाज किया था और फाइटिंग की बातें कर ली थी, तो वो अभी हो चुकी हैं, थोड़ी सी और भी होंगी इंशाल्लाह बाद में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम थोड़ा सा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो फजाइल हैं, जो उनकी अजमतें हैं ना, उनके बारे में कुछ बातें करेंगे आज इंशाल्लाह। और वो हम ज्यादातर अपने हजरत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातहुम की किताब रहे सलामत तुम्हारी निस्बत में से पढ़ के करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि हम इसको पढ़ना शुरू करें, हम आपसे एक सवाल करते हैं जिसका जवाब उम्मीद है कि हमारे जो होम स्कूलिंग का बैच है, बड़े बच्चों का जो ये हजरत बैठे हुए हैं, तो वो इसका जवाब उम्मीद है कि दे पाएंगे, ठीक है। तो वो सवाल ये है कि हमने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये पढ़ा पिछली क्लासेस के अंदर कि जब नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तो उसके बाद जो है ना मुसलमानों के ऊपर बहुत मुश्किल हालात आ गए, ठीक है ना, बड़े सख्त हालात। सबसे बड़ा जो 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 सदमा था मुसलमानों को, गम था, वो क्या था कि नबी अलैहिस्सलाम चले गए, ठीक है ना। इतनी शदीद मोहब्बत थी सारे सहाबा को, और जिससे आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत हो उसका इंतकाल हो जाए, और अब आपको पता हो कि अब इनसे मुलाकात नहीं होगी, हाँ होगी, सदियों के बाद मुलाकात होगी, ठीक है, होगी, लेकिन बहुत बाद में मुलाकात होगी, तो फिर बहुत गम और बहुत सदमा होता है। तो सहाबा के ऊपर जितना सदमा आया उसका तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये कि जो बहुत सारे लोग थे जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे और मदीना तैयबा से बाहर दूर रहते थे, अंसार और मुहाजरीन में से नहीं थे, तो ऐसे लोग जो है ना फिर मुर्तद हो गए बहुत सारे उनमें से, बहुत सारे उनमें से जो है वो किसी झूठे नबी को फॉलो करना शुरू हो गए, और कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने के ज़कात देने से इनकार कर दिया वगैरह, और तो बहुत मुश्किल हालात थे। तो ऐसे मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिएक्शन क्या था, ठीक ठीक है, उनका क्या इसके ऊपर रिएक्शन था, वो अज्मो हिम्मत के, ठीक है, अज्मो हिम्मत के और हौसले के, और क्या कहें इसको, यानी पहाड़ बन गए, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि चाहे कुछ भी हो, मैंने इन लोगों से लड़ाई करनी है, मैंने उनसे जिहाद करना है। ऐसे मौके पर आपको पता है कि इवन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, इवन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, जो कि हर वक्त उनका यही होता था कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसका सर कलम कर दूं, मैं इसका तलवार से जो है वो सर उड़ा दूं, बस आप इजाजत दीजिए और बस मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। इतने अजीम, अच्छा हिम्मत भी उनके अंदर भी थी अच्छी खासी, कि जब मुसलमान हुए थे तो उस वक्त तक कोई काबतुल्ला पे जाकर के नमाज नहीं पढ़ सकता था मुसलमान के लिए, सब छुप करके दारे अरकम के अंदर नमाज पढ़ा करते थे। इनके मुसलमान होने के बाद मुसलमानों ने पहली दफा जमात की शक्ल में काबतुल्ला के सामने जाकर के नमाज पढ़ी थी। तो उमर फारूक रताना जो है ना, ये यानी ये पैदाइशी हिम्मती थे, हिम्मत वाले थे, ठीक है। और मुसलमान होने के बाद उन्होंने फौरन से अपनी हिम्मत का एक इजहार कर दिया, हाँ भी मैं जा करके जमात करवाऊंगा, मैं जो तकबीर पढ़ूंगा और वगैरह। इस मौके पर इवन वो भी जो है ना, वो थोड़े से घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, और अबू बकर सिद्दीक रज़ा उनको मशवरा देने लगे थे कि ठहर जाइए, अभी हम जो है ना वो इतनी मुश्किल हालत में है कि हम अगर उनसे मुकाबला करने के लिए फौज भेज देंगे तो मदीना मुनव्वरा का क्या होगा, और लोग जो है वो। अबू बकर सिद्दीक रज़ा ने उस मौके पर क्या फरमाया था, फरमाया था कि एक अरबी का छोटा सा जुमला है, इसको अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। फरमाया था अयन तो दीनु वहु वा अना हयुन, कि ये लोग अल्लाह ताला के दीन में कमी करें, कहें कि जी जकात नहीं देंगे, या जकात जो है वो मदीना तैयबा नहीं भेजेंगे, बल्कि जकात जो है वो खुद निकाल करके खुद ही उसका हिसाब करेंगे, यानी दीन में कमी कर लेंगे, और मैं जिंदा हूं इस हाल में कि मैं जिंदा हूं, ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, ओवर माई डेड बॉडी, ये एक अंग्रेजी का कहावत है कि अगर तुमने ये काम किया ना, मैं तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा ये काम। हाँ, अगर मैं मर गया तो फिर मेरी लाश पर से गुजर के तुम्हें जाना होगा, तब तुम ये काम कर सकते हो, इसको कहते हैं ओवर माई डेड बॉडी, जिंदा होते हुए तो मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, यही बात अबू बकर सिद्दीक रज़ा ने फरमाई, ठीक है। और ये भी फरमाया था ना, और क्या फरमाया था, किसी और को याद है उन्होंने क्या फरमाया था उमर फारूक रज़ा को, क्या उनका कॉल, आपने तो माशाल्लाह बड़ी किताबें पढ़ ली, बताएं क्या फरमाया था कि
अगर
हाँ, अगर मदीना मुनव्वरा खाली हो जाए, सारे लड़ने वाले लोग कॉम्बैटेंट्स जो हैं वो चले जाएं, मैं अकेला यहाँ पे रह जाऊं, और जो जंगल के जानवर हैं, शेर भेड़िया, वो आकर के जो है ना वो मुझे नोचें, मुझे खा लें, और यहाँ की जो हमारी औरतें हैं और बच्चे हैं उनको नोच डालें, फिर भी मैं भेजूंगा इस फौज को, फिर भी मैं भेजूंगा, ठीक है ना, यानी आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। तो ये जो अजीम हिम्मत थी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, ये सवाल है कि ये हिम्मत उनके अंदर कैसे पैदा हुई, ठीक है, ये हिम्मत उनके अंदर कैसे पैदा हुई। अंकल्स को तो हम अंकल बता चुके हैं, तो उस वजह से अंकल को जवाब न देने की कोशिश करें, तो बच्चों से सवाल है, चले पहले इनसे पूछ लेते हैं, बाकी आप लोग तो क्लास में भी थे तो
नफ्स
चीटिंग नहीं होगी। खैर, नफ्स की इस्लाह होना, ये जवाब हम एक्सेप्ट नहीं करते, इस वाले जवाब, ठीक है। तो जी साहिब, अच्छा वो बाकी साहब भी आखिरत के लिए करते थे, उमर फारूक खुदान भी आखिरत के लिए करते थे, आप सोहबत से आप अल्लाह ताला ने लड़ना है, अच्छा और कोई जवाब, परसों वाली साइंस क्लास में से जवाब चाहिए मुझे, वैसे मुश्किल है, वैसे मैं आई अंडरस्टैंड कि इतना आसान नहीं है उसका जवाब देना, फिर भी बताएं।
हो सकता है कि अभी तो इनका ईमान इतना था और ये नदी को भी नुकसान भी मिल गया था, इसलिए अपनी जान से ज्यादा वो थी।
और भी बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो, माशाल्लाह तवज्जो तनवीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरों के ऊपर भी थी। इनमें और दूसरों में फर्क क्या है, इनमें और दूसरे सहाबा में क्या फर्क? ठीक है, अब अंकल्स को भी दिन जा रहे हैं जवाब देने का। जी बताएं, सबसे
सबसे ज्यादा मेरे पास सोबत
ज्यादा सोहबत मिली थी और इनको चीजों की गहरी अंडरस्टैंडिंग थी। तो कैसे गहरी अंडरस्टैंडिंग थी, कैसे मिली थी इनको गहरी अंडरस्टैंडिंग? वो सबसे ज्यादा गौर से सुनते थे। चले, ये आपने पिछली से पिछली क्लास से जवाब दिया है, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट हियरिंग एंड सीइंग, आपने पिछली से पिछले हफ्ते वाली क्लास से जवाब दिया है। हम अभी इस वाली क्लास की से आपके जवाब मांग रहे हैं, तो इस वाली क्लास से इसका जवाब क्या है? मोहम्मद की मोहब्बत, मोहब्बत और अताअत कामिल थी, मोहब्बत और अताअत कामिल थी। चलें, कामिल तक तो पहुंच गए, तो मोहब्बत और अताअत कामिल थी। अच्छा, मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है कि जो के हमारे बस में नहीं होती, तो मोहब्बत तो पैदा होती है, अल्लाह ताला मोहब्बत देते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रहतान के अंदर अगर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कामिल थी, तो ये अबू बकर सिद्दीक रहतान का कोई कमाल नहीं था, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने उनको दे दी। अबू बकर सिद्दीक रहतान ने क्या किया? कमाल तो वो होता है ना किसी शख्स का जो कि वो खुद करता है। मोहब्बत तो अल्लाह ने दे दी, अल्लाह ने दिल में डाल दी, भाई अल्लाह ने दे दिया, मेरा क्या कमाल है, मैंने क्या किया इसके लिए? ठीक है,
नहीं
नफ्स को काबू में कर लिया था, नहीं, नफ्स को काबू में कर नहीं लिया था, बल्कि
तो दुनिया पे चलती फिर की आवाज है ना, चलो उसको मार।
उन्होंने अपने नफ्स को नबी अलैहिस्सलाम के सामने कामिल फिना कर दिया था, कामिल हलाक कर दिया था, कामिल एनाइहिलेट कर दिया था, कामिल कुर्बान कर दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था अपने नफ्स को। नफ्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है, साइंस क्लास है? ये फोर लॉक, नासिया, राइट, यहाँ पे नासिया होता है, इसको जो बाल होते हैं ना यहाँ पे, इसको कुरान मजीद में है नासियतिन काज़िबतिन खातिया, ठीक है ना। इसके पीछे होता है फोर हेड, ये जो आपकी पेशानी होती है, इस पेशानी के पीछे ब्रेन होता है, ठीक है ना। इस ब्रेन का जो पोर्शन यहां पर होता है ना, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये जो आपका पोर्शन होता है ना ब्रेन का, ये इंसान की किस चीज को कंट्रोल करता है? ये इंसान की जो है ना, ये शख्सियत को कंट्रोल करता है, पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये इंसान की जो जो कुव्वत होती है, जो हिम्मत होती है, ठीक है, जो इंसान की इनिशिएटिव लेने की सलाहियत होती है, प्रॉपर जजमेंट, यानी प्रॉपर तो खैर नहीं कहना चाहिए, जजमेंट लेने की, यानी हिम्मत जिसको कहते हैं, ये यहां पर होता है नफ्स, ठीक है। तो इस नफ्स के अंदर हिम्मत होती है, नफ्स के अंदर, अच्छा, हिम्मत, नफ्स की जो हिम्मत होती है, तो इस हिम्मत को कहते क्या है, नफ्स की हिम्मत को क्या कहते हैं?
निश्चित रूप से
नहीं, नफ्स की हिम्मत को क्या कहते हैं, जब नफ्स हिम्मत करता है, नहीं, जब नफ्स हिम्मत करता है तो उसको क्या कहते हैं? नहीं, शब्द नहीं कहते, उसको कहते हैं जिद उसको कहते हैं जिद, ठीक है ना। मुझे ये चीज चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मैं आइसक्रीम लेके रहूंगा, मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए, मैं ये ड्रेस लेके रहूंगा, ठीक ठीक है ना। अब उसके लिए जो है वो मुझे अम्मी को तंग करना पड़े, मुझे अब्बू का सर खाना पड़े, चाहे मुझे रोना पड़े, चाहे मुझे धोना पड़े, चाहे मुझे जमीन और आसमान जो है वो एक करना पड़े, आई वॉन्ट दिस एंड आई विल हैव इट नो मैटर वॉट। इसको क्या कहते हैं? इसको हिम्मत कहते हैं? नहीं, इसको कहते हैं जिद। ठीक है ना, ये जिद जो होती है ना, ये होती है इंसान के नफ्स के अंदर। ठीक है ना, तो अब ये जो नफ्स की जिद होती है ना, इसको जब कोई तोड़ देता है, खत्म कर देता है, हलाक कर देता है, तो अब उसके अंदर जो हिम्मत, अब जो उसके अंदर आती है ना पावर, वो पावर अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है उसको। ठीक है ना, क्योंकि अब उसने अपने नफ्स की जिद को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, मार दिया, अब अल्लाह ताला उसको ताकत अता फरमाते हैं। और ये ताकत और ये हिम्मत जो होती है ना, ये प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब प्रोपोर्शनल होती है? कि तुमने
अगर
तो व्हाट इज इट प्रोपोर्शन विद? जी मुझे
एक
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब? कि जिसने नफ्स को जितना ज्यादा मारा, उतनी अल्लाह ताला ज्यादा उसको हिम्मत अता फरमाएंगे। यानी जिसने नफ्स की जिद को जितना कम किया, अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत इतनी ज्यादा दे दी। ठीक है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा था। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, दूसरी चीज कम होगी तो ये चीज बढ़ेगी। इन दोनों में कौन सी वाली प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला में और दूसरों में फर्क ये था कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हों ने जितना अपने आप को फिना किया था, अपने नफ्स का मुजाहिदा किया था, अपने नफ्स को मारा था नबी अलैहिस्सलाम के सामने, उतना किसी और ने नहीं मारा था, किसी और ने उतना नहीं मारा था। इस वजह से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को अल्लाह तआला ने उतनी हिम्मत अता फरमाई जितनी हिम्मत किसी और के अंदर नहीं थी। अब हम सीरत क्लास के अंदर ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे भी सहाबी थे कि जिन्होंने जो है वो अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, कल मेरा दुश्मन से मुकाबला हो और वो दुश्मन मेरे ऊपर गालिब आ जाए और वो मुझे कत्ल कर दे, और फिर कत्ल करने के बाद मेरी नाक को भी काट दे, मेरे कान को भी काट दे, और मेरी लाश को जो है वो मुसला कर दे, और फिर कयामत के दिन, ए अल्लाह, मैं आपके सामने हाजिर हूं, आप मुझसे पूछें कि अब्दुल्ला तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ, तो मैं जवाब दूंगा अल्लाह आपकी मोहब्बत में हुआ। और अल्लाह ताला फरमाए कि हाँ वाकई तुम सच कह रहे हो, तुम्हारा ये हाल जो है वो मेरी मोहब्बत में बना। सीरत क्लास के अंदर ये वाकया सुना के हमने आपसे क्या कहा था बताएं?
इनका
इन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा जो है ना वो जबरदस्त किस्म की दुआ करी, लेकिन इनका मुकाम कहाँ पर है सहाबा में? जी मुस्तफा, लेकिन गर्दन गर्दन का मतलब क्या होता है?
अल्लाह को सर घटाने से ज्यादा चाहिए।
एग्जैक्टली, उस वक्त हमने आपको ये बात बताई थी कि सर कटाना अल्लाह के रास्ते में ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है? सर को झुकाना। ठीक है ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसी कोई दुआ नहीं करी कि मैं दुश्मन से लड़ाई करूं, दुश्मन मार दे और फिर मुझे मुसला कर दे। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला छोड़े, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने कभी ऐसी दुआ नहीं करी, राइट? और जो है वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने कभी ऐसी दुआ नहीं करी। अशरा मुबशरा में से, अच्छा ये जो अब्दुल्ला बिन क्या नाम था इनका, ये इनका शुमार ना अशरा मुबशरा के अंदर होता है, ना इनका शुमार जो है वो खुलफाए राशिदीन में होता है। तो ये लोग क्यों आगे बढ़ गए? अबू बकर सिद्दीक रतान आगे कैसे बढ़ गए, उमर फारूक रतान आगे कैसे बढ़ गए? क्योंकि इन्होंने जान की कुर्बानी के लिए तो ये तैयार थे ही। इन्होंने कौन सी चीज कुर्बान करी जिससे जो है वो ये सबसे आगे बढ़ गए? इन्होंने जो है ना वो अपने नफ्स को कुर्बान किया, इन्होंने अपनी अकल को कुर्बान किया। क्योंकि ये लोग क्या थे? ये लोग बहुत ज्यादा अकलमंद लोग थे, ये मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा इज्जत वाले लोग थे। अबू बकर सिद्दीक रातवान की इज्जत इतनी ज्यादा थी, इतना बड़ा मुकाम था कि इवन नबी अलैहिस्सलाम के बराबर बराबर उनका मुआशरे के अंदर मुकाम होता था, और लोग इनके पास जाया करते थे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में पूछने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई प्रेशर डलवाने के लिए अबू बकर सिद्दीक रातवान के पास लोग आया करते थे। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा मुकाम था, लेकिन इन्होंने अपनी सारी की सारी इज्जत नबी अलैहिस्सलाम के सामने, अपना सारा का सारा माल नबी अलैहिस्सलाम के सामने, अपना सारा का सारा अकल समझ सब नबी अलैहिस्सलाम के सामने निशावर कर दी। ठीक है, तो इनके बारे में फिर हमारे मशायख हजरत जी दानुल्कातुम ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि नस्बतों की जितनी अकसाम होती है ना, कि भी किसी को किसी अपने शेयर के साथ नस्बत मिलती है, तो उनमें से सबसे ज्यादा मजबूत और आला नस्बत जो होती है ना, उसको कहते हैं निस्बते इत्तेहादी। ठीक है, निस्बते आपने कहा था इज्तिहादी, लेकिन वो होता है इत्तेहादी। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई इंसान किसी के सामने, अच्छा किसके सामने, अल्लाह के सामने नहीं, अबू बकर सिद्दीक रतारान को निस्बते इत्तेहादी अल्लाह के सामने अपने आप को कुर्बान करने से नहीं मिली, किसके सामने कुर्बान करने से मिली, नबी अलैहिस्सलाम के सामने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। ठीक है, और इन्होंने ऐसे अपने आप को कुर्बान कर दिया कि एक अमीर खुसरो, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं हिंद के अंदर, उनका ये फारसी का शेर है जो कि हमारे मशायर नकल करते हैं हमेशा, मन तू शुदम तू मन शुदी। ठीक है, मन तू शुदम, मैं तू बन गया, ठीक है ना, मैं आप बन गया, तू मन शुदी, आप मैं बन गए। ठीक है, मन तन शुदम तू जान शुदी, मैं जिस्म बन गया और आप उस जिस्म की जान बन गए। मन तन शुदम, मैं तन बन गया, जिस्म बन गया, और तू जान शुदी, आप जो है वो उस जिस्म की जान बन गए। नाकस न गोयत बाद अजी, मन दी गरम तू दी गरी। ये इतना ज्यादा हम दोनों एक बन गए कि अब कोई ये बात नहीं कह सकता कि मैं कोई और था और आप कोई और थे, हम दोनों एक ही हो गए। ठीक है ना, अब ये कोई अल्लाह के साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी, अल्लाह ताला के साथ तो ये शिर्क हो जाएगा, ये गुस्ताखी हो जाएगी, और इसके ऊपर फिर सजाए मौत। ठीक है ना, इसके ऊपर फिर फांसी मिलती है इसके बाद, जैसे कि वो है ना मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह, वो गलबा हाल में ना, वो जरा ऐसे हो गए थे कि उनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकल गई थी, तो काजी जो थे उस वक्त के, उन्होंने उनको सजा की मौत दे दी कि भाई ये इन्होंने जो है ना वो, कि उन्होंने कह दिया था अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। ठीक है ना, वो अनल्लाह जो उन्होंने कह दिया था, वो असल में नहीं कहा था, वो उन्होंने, उसको कहते हैं जब आप बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर गलबा हो जाता है, तो आप इस तरह की बातें कभी मुंह से किसी के निकल जाती हैं, तो अल्लाह के साथ तो ये बात करना जो है ना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, लेकिन इंसान के साथ ये बात कर सकते हैं। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐसी नस्बत इत्तेहादी मिल गई थी। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को इतनी हिम्मत अता फरमाई, इतनी हिम्मत अता फरमाई कि इंसानियत में कभी किसी इंसान के पास सिवाय अंबियाए कराम के किसी इंसान को इतनी हिम्मत नहीं मिली। ठीक है, और वो फिर सारे लोगों से लड़ गए, हत्ता के जब लड़ाई से फारिग हुए ना उनकी फौजें, तो उसके बाद भी जो है वो मदीना तैयबा के अंदर उन्होंने वेकेशन नहीं मनाई, बल्कि कहा अच्छा अब जो है वो हम मुर्तदीन से और इनसे जो है वो फारिग हो गए, अब चलो ईरान चलो और तुम जो है ना इधर रोम जाओ। इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत। ठीक है, तो अब ये हिम्मत जो तो उनको मिली थी ना, तो उसकी फिर बहुत सारी शक्लें और उसकी तफसीलात जो है वो मशायख ने अपनी किताब के अंदर लिखी है। जी क्या, ईरान और फारस दोनों एक ही जगह को कहते हैं ना? ठीक है, नहीं टाइम में देख रहा हूँ, सही है। तो अब ना इसकी कुछ आप मिसालें सुने कि हमें कैसे पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और नबी अलैहिस्सलाम का मामला बिल्कुल एक जैसा मामला हो गया था। ठीक है ना, सिवाय इसके कि नबी अलैहिस्सलाम के पास नबूवत थी और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने नबूवत नहीं दी थी। ठीक है ना, वो उम्मती ही थे, इसको फिना फिर शेर भी कहते हैं, इसको इत्तेहादी भी कहते हैं, वहाँ उसके उसमें जी ठीक है, और मैं भी जवाब आ गए थे। तो अब फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हद तक अपनाया था कि आपके इखलाक, आदात, नशिस्त व बरखास्त यानी बैठना उठना और शमाइल खसाइल बिल्कुल सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंग गए थे, बिल्कुल ऐसे ही बन गए थे जैसे अबू बकर सिद्दीक सदान, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे। ठीक है, चंद मिसालें मुलायजा हूँ। पहली मिसाल कि इब्तदाई वही में हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजूर जब नबी अलैहि सलाम तशरीफ लाए ना, जब नबी अलैहि सलाम के ऊपर वही नाजिल हुई और गार हिरा से आप सरसम नीचे उतरे, अपने घर गए हजरतुल कुबरा रजवातुल अनहा के पास, तो आप सरसम के ऊपर कपकपी तारी हुई हुई थी। क्यों कपकपी तारी हुई थी? क्योंकि जिब्राइल अमीन आए थे गारे हिरा के अंदर, एक तो बिल्कुल अननोन इंसान थे, उस जमाने में अननोन लोग कोई थोड़ी ऐसे आ जाया करते थे, आप जानते थे लोगों को, छोटा सा टाउन होता था मक्का मुकरमा, तो ये एकदम अननोन आदमी आ गए और वहां पे आ गए गारे हिरा के अंदर, और फिर आकर के उन्होंने ऐसे नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म देना शुरू कर दिया, इकरा पढ़ो इकरा पढ़ो, और नबी अलैहिस्सलाम मुझे माना बिखारी माना बिखारी, मुझे पढ़ना नहीं आता मुझे पढ़ना नहीं आता। और फिर जब नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफा इनकार किया तो फिर क्या हुआ था कि हजरत जिब्राइल अमीन ने, जो कि अल्लाह ताला के सबसे बड़े फरिश्ते सबसे मुकर्रब फरिश्ते, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे करके पकड़ा और दबा दिया, ठीक है ना, और इतना दबाया कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी जो रिब्स है ना, रिब केज, यहाँ की रिब्स यहाँ आ गई और यहाँ की रिब्स यहाँ आ गई है, इतना और सख्ती के साथ दबाया। अब कोई आपको पकड़ के एक अननोन आदमी आए और ऐसे दबा दे तो फिर क्या होगा आपके साथ, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम शदीद जो है ना वो खौफ में मुब्तला हो गए थे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन है ये भाई, क्यों इस तरीके से मुझे दबोच रहा है। तो इस तरीके से फिर नहीं, 3 दफा के बाद नहीं बल्कि पहली दफा के बाद दबाया, फिर कहा इकरा, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा नबी कारी, फिर दबाया यूं करके भेज दिया, फिर इसी तरीके से, और जब 3 दफा हो चुका फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक खलक अल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अक्रम अल्लजी अल्लम बिल कलम अल्लम अल इंसान मा लम यालम, ठीक है, ये उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के सामने पढ़ दी और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिफ्ज करवा दी, दिल के अंदर उतर गई आया, ठीक है। लेकिन इतनी कपकपी इतना खौफदारी हुआ कि सैयदुल कुबरा जान के पास गए और फरमाया जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मेरे ऊपर कंबल उड़ा दो, मुझे सर्दी लग रही है कपकपी लग रही है, कंबल उड़ाओ मुझे। तो सैयदुल कुबरा जान ने कंबल तो उड़ा दिए, लेकिन उसके बाद सैयदुल कुबरा जानों ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप फिक्र ना करें, आप डरे नहीं, आप खौफ ना करें, अल्लाह ताला आपको जाया नहीं होने देगा। क्यों नहीं जाया होने देगा? क्योंकि वल्लाही अल्लाह की कसम इन्नका लतसिलुर रहम, कि आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप रिश्तेदारियों को जोड़ने वाले हैं, वा तहमिलुल कल, और जो बेसहारा लोग होते हैं ना जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं होता आप उनकी मदद करते हैं, वा तकसिबुल मादूम, और जिनके पास कोई कमाने का जरिया नहीं होता आप उनके लिए कमाते हैं उनको खिलाते हैं, ठीक है, वा तुक्रिउल ज़ईफ, और जो मेहमान होते हैं आप उनके मेहमान नवाजी करते हैं, वतुईनु अला नवाएबिल हक, और आप नेकी के कामों के ऊपर मदद करते हैं लोगों की। तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी ऐसी खूबियां बयान करके आप सरसों को हिम्मत दी कि आप डरे नहीं, फिक्र ना करें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को तो सब जानते थे और मानते थे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की जो 5 सिफात उन्होंने गिनवाई ना, बिल्कुल यही अल्फाज एक दफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने अनहो को एक काफिर ने ये वाले अल्फाज कहे जिसका नाम था इब्नु दगना, ठीक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु जो है वो एक दफा बिल्कुल दिल बर्दाश्त होकर के ना मक्का मुकरमा छोड़ करके जा रहे थे, तो ये इब्नु दगना उनको रास्ते में मिला, पूछा कि आप किधर जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं मक्का मुकरमा छोड़ करके जा रहा हूँ, यहाँ के लोग जो है ना बिल्कुल बात नहीं मानते हैं और इतना तकलीफें पहुंचा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो उस काफिर ने एग्जैक्टली यही अल्फाज जो कि खदीजतुल कुबरा दानों ने नबी अलैहिस्सलाम को हिम्मत दिलाने के लिए कहे थे, वही अल्फाज उसने जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक को कहे थे, ठीक है। तो ये जो होता है ना कि ये जो सिमिलैरिटी हुई, अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने तो उसको ये बात नहीं कही थी कि भाई मुझे ये वाले अल्फाज कहो, ना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ने ये बात उस काफिर को कही थी कि भाई मैंने इनके जो साहिब है ना उनको मैंने ये बात कही थी तो तुम भी ये बात कह देना, ये बात किसी को नहीं पता थी कि नबी अलैहिस्सलाम को ये बातें कही गई हैं, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला ने उस काफिर के दिल में डाली और फिर उसने वही बातें कही। ये कब होता है? जब दो अफराद को आपस में ऐसी निस्बत मिल जाती है, इत्तेहादी निस्बत, ठीक है, तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर ऐसे मामला होने शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से एक और मौके पर क्या हुआ, अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ईमान वालों के ऊपर रऊफ और रहीम बनाया, ठीक है ना, कुरान मजीद में है वह बिल मोमिनीना रऊफ और रहीम, कि आप ईमान वालों के साथ बहुत ही ज्यादा मेहरबान और रहम करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया कि अरहमु उम्मती अबू बकर, कि मेरी उम्मत के ऊपर सबसे ज्यादा जो रहम दिल है ना वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। और एक मौके पर फरमाया अरअफ उम्मती अबू बकर, सबसे ज्यादा रऊफ, रऊफ भी इसी को कहते हैं यानी शफीक, बहुत ज्यादा मेहरबान वो उम्मत के ऊपर नबी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। ठीक है, तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को जो जो बात फरमा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम उसी तरह की बात जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इवन नबुवत मिलने से पहले कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, उसी तरीके से अबू बकर सिद्दीक उन्होंने भी मुसलमान होने से पहले भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी शेरो शायरी नहीं कही, आप पोएट नहीं थे, शेरो शायरी कहने वाले दूसरे लोग होते थे, पोएट्री कहते थे, बहुत सारे अरब बहुत सारे सहाबा जो है वो अपनी तरफ से पोइट्री बनाकर कहा करते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने ना कभी पोइट्री करी और ना कभी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने शेर व शायरी करी। ठीक है, हाँ, दूसरों के लिखे हुए शेर, दूसरों के कहे हुए शेर वो नबी अलैहिस्सलाम ने कभी पढ़ दिए या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी पढ़ दिए, क्योंकि याद तो थे लेकिन अपनी तरफ से कभी पोइट्री नहीं करी। ठीक है, तो ये भी नबी अलैहिस्सलाम की एक शान होती है कि आप जो है ना, मा अना बिशायर, मैं शायर नहीं हूँ। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया के बारे में फरमाया कि ये शायरी जो है ना ये इनके मुनासिब हाल नहीं है, अबू बकर सिद्दीक भी शायर नहीं थे। क्या अच्छा, और क्या अबू बकर सिद्दीक के बारे में जो नस्बत इत्तेहादी हासिल थी कि अबू बकर सिद्दीक ने भी जो दीन की तबलीग का काम किया वो भी नबी अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा मुमासलत रखता है। नबी अलैहिस्सलाम को बहुत मारा था एक दफा काफिरों ने। ठीक है, उसी तरीके से एक दफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर तो याद है ना कि वो ऊंट की ओझड़ी ला करके रख देते थे आप सजदे में, और पीठ पीछे ऊंट की ओझड़ी, बकरे की ओझड़ी अगर हमारे ऊपर कोई रख दे ना, एक तो उसकी बदबू और उसकी गलाजत से हमारा हमारी जान निकल जाएगी, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा होता है, बकरे की ओझड़ी इतनी बड़ी होती है, अगर बकरीद में आपने देखा हो, गाय की ओझड़ी जो है ना वो इतनी बड़ी हो जाती है, पता नहीं ऊंट की ओझड़ी कितनी बड़ी होती होगी। ठीक है ना, ऊंट कितना बड़ा जानवर होता है, उसका कितना वजन होगा, नबी अलैहिस्सलाम के पीठ मुबारक के ऊपर आकर के ओझड़ी रख दी। उसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी एक दफा नबी अलैहिस्सलाम को बचाने की जो कोशिश करी तो लोगों ने अब नबी अलैहिस्सलाम को तो छोड़ दिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना मारा कि बेहोश हो गए। ठीक है, लेकिन जब उनको होश आया, उनके कबीले वाले बिलाखिर आए, उनको उठा करके घर ले गए, जब उनको होश आया सबसे पहले यही बात पूछते हैं नबी अलैहिस्सलाम कैसे, मा बाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे। तो वो जो कबीले वाले थे वो तो काफिर थे, वो तो खानदान की वजह से उनको उठा के ले आए थे ना, तो उन्होंने जब सुना कि अच्छा इतना पिटने के बाद अभी भी ये उन्हीं के बारे में पूछे जिनकी वजह से उनको पिटाई लगी, वो सारे के सारे नाराज होकर चले गए। ठीक है, तो इन्होंने अपनी वालदा से कहा कि वालदा आप मुझे पहले नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर के जाए, जब तक मैं उनकी शक्ल नहीं देखूंगा ना मुझे इत्मीनान नहीं आएगा। तो वालदा बिलाखिर, वो भी सब कुछ शायद मुसलमान नहीं हुई थी, इनको लेकर गई, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा तब इनके दिल को ठंडक मिली। ठीक है, तो ऐसी मोहब्बत इनको नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। और हिम्मत वाला वाक्य तो आप पहले ही सुन चुके हैं कि जब अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को कितनी हिम्मत अता फरमाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था ना, जब काफिर आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का मुकरमा के अंदर के, आप बस इतना कर लें कि हमारे बुतों को जो है ना वो हल्का सा हाथ लगा दिया करें, ठीक है आप हमारी बात ना माने, आप जो है वो बुतों को सजदा ना करें, बस आप कभी आकर के ऐसे हाथ लगा दी, हाथ लगाना जो था ना, हाथ लगाना से मतलब ऐसे छू देना, ये वो लोग जो है ना मोहब्बत के लिए क्या करते थे। ठीक है ना, कि जैसे किसी के साथ, जैसे हम गाय आती है ना तो गाय को ऐसे करके थपकाते हैं, तो ये हमारी मोहब्बत का इजहार होता है गाय के साथ। ठीक है, तो वो लोग बुतों के ऊपर ऐसे हाथ रखते थे, ये मोहब्बत के इजहार के लिए हाथ रखते थे। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस आप आकर के मोहब्बत ऐसा हाथ रख दिया करें। ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम उसके लिए भी तैयार नहीं है। एक दफा काफिर आए, कहने लगे कि हम आपको मालो दौलत से भर देंगे, ठीक है, और हम आपकी शादी मक्का मुकरमा में जो जिस औरत से आप चाहेंगे हम उससे आपकी शादी कर देंगे, हम आपको जो है वो अपना बादशाह बना लेंगे। ठीक है ना, बस आप जो है ना वो ये हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दें। मेरे सर फरमाया कि अगर ये लोग मेरे एक हाथ के ऊपर चांद और दूसरे हाथ के ऊपर सूरज भी ला करके रखते हैं ना, मैं फिर भी इन बुतों को बुरा भला कहना नहीं छोड़ता। इतनी हिम्मत, इतनी इस्तेकामत। हत्ता कि एक दफा नबी अलैहिस्सलाम के सगे चचा जो आपसे असलम को हमेशा सपोर्ट किया करते थे, अबू तालिब, उन्होंने आकर के भी कहा कि मेरे भतीजे इतना ज्यादा मेरे ऊपर बोझ ना डालो, मैं बूढ़ा हूँ, सारे लोग जो है ना वो तुम्हारी वजह से मेरे भी खिलाफ होते चले जा रहे हैं, इतना मुझे जो है ना वो इतना मुझे मत बोझ डालो मेरे ऊपर। तो नबी अलैहिस्सलाम उनको भी यही जवाब दिया था कि चाचा मैं कुछ कर ले, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। ठीक है, और यही मामला जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के साथ भी हुआ था कि जब लोग जो है मुर्तद होना शुरू हो गए थे और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर के ऐसा मशवरा दिया था कि आप जरा सा थोड़ी कम नरमी कर लें, बाद में देख लेंगे लोगों को वगैरह, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो जवाब दिया ना, खतरनाक जवाब था। उन्होंने फरमाया अजब्बारुन फिल जाहिदिया के, और उमर जैसे हम कहते हैं अरे तुम जाहिलियत के अंदर तो बड़े सख्त थे, जब्बार थे, बड़ा जो है ना लोगों को डर, तुमसे डर लगता था और तुम बड़े हिम्मत वाले थे। अजब्बारुन फिल जाहिलिया वा खवारुन फिल इस्लाम, और इस्लाम के अंदर आकर के तुम जो है वो ऐसे हो गए हो, खौर किस काम कहते हैं उर्दू में, खौर हो गए हो, यानी बहुत सख्त अल्फाज कहे उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है ना, कि तुम मुझे मशवरा दे रहे हो कि मैं नरमी कर लूं इन लोगों के साथ, मैं इनके साथ लड़ाई ना करूं। ठीक है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने और बाकी सहाबा ने बाद में कहा था कि वाकई अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसी हिम्मत अता फरमाई थी जो कि सिर्फ नबियों के पास इतनी हिम्मत हो, कोई उम्मती जो है ना वो इतना ज्यादा हिम्मत वाला नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम हिजरत के बारे में बस एक बात करके ना फिर इसका क्लास को खत्म कर देता है, आपकी दूसरी क्लास शुरू हो सके। हिजरत को जो उसका जो सफर था, आपको अगर याद हो कि हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास में बहुत दिनों तक हिजरत के ऊपर बात करी। ठीक है, तो हिजरत के सफर के बारे में एक शेर है, हमारे शायर भाई लोग हैं तो उनको याद है, हिजरत के सफर के बारे में एक शेर आप लोगों को सुनाया था, आप कुछ पूछ रहे थे जब एज दोनों की सेम नहीं थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला 2 साल छोटे थे, ठीक है, लेकिन इंतकाल के वक्त दोनों की एज सेम हो चुकी थी। ठीक है ना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के फिर 2 साल बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ था, तो इंतकाल की एज दोनों की सेम थी, 63 ईयर्स अकॉर्डिंग टू हिजरी कैलेंडर। ठीक है, तो जो हिजरत का सफर था वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कुछ कहा था, कुछ बताया था आपको। और आप, हाँ यही कह रहे थे ना, तो इसके बारे में हमने आपको वो शेर सुनाया था जो कि हमने अपने हजरत जी से सुना। ठीक है ना, हजरत जी अक्सर जो है वो इस मौके के ऊपर ये शेर पढ़ते हैं जब ये बात करते हैं कि गोया के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, आका है ना, आका अलैहिस्सलाम मेरे लीडर, मेरे आका, तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, आपकी मेराज किया है कि आप 7वें आसमान तक पहुंचे, उसके ऊपर आपने लौह को देखा, तख्ती को देखा, कलम को देखा, तो तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। ठीक है ना, तो वो जो हिजरत का सफर था ना वो सिर्फ 3 रातें नहीं जो कि गारे सौर के अंदर गुजारी थी, बल्कि पूरा का पूरा सफर ही जो था ना वो गोया के इट वॉज ऑल अबाउट अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। ठीक है ना, हर काम में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला वहीं पर है, हर चीज में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। मुझे याद आया, खैर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अल्लाह ताला माफ करे ये नहीं, लेकिन एक बात याद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसका भी तो हुक्म है ना कि वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ठीक है, कि और अल्लाह ताला की जो नेमतें होती है ना तो उनको बयान भी किया करो। तो अल्लाह ताला की एक नेमत उस फकीर के ऊपर भी हुई कि जब हमारे हजरत जी दौरे का, तो हम अमेरिका में आखिरी उनका सफर था 2005 के अंदर, तो उस वक्त जो है ना उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपना जो सालाना नॉर्थ अमेरिकन नक्शबंदी इज्तिमा करते हैं ना, तो वो इज्तिमा इस साल हम न्यूयॉर्क में करने की बजाय हम शिकागो में करेंगे, ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क में जब होता था तो हम सारे के सारे हम शिकागो में रहते थे, नौजवान बहुत सारे थे तो हम सारे के सारे न्यूयॉर्क जाते थे, वहां पे इज्तिमा अटेंड करते थे। उस साल अजन ने काम शिकागो में इज्तिमा करें, और इज्तिमा भी कहाँ करेंगे, जो हमारी अपनी लोकल मस्जिद थी ना, मक्की मस्जिद, वहां पे गुजराती हजरात की थी, तो वहां पे इज्तिमा होगा, ठीक है। तो अब जब हमें ये प्रोजेक्ट मिला तो हमें जो है ना, जो हमारे टीचर थे हजरत जी के, खलीफा साहब, उन्होंने कहा कि भाई काशिफ साहब प्लानिंग करें, ठीक है ना, आप प्लानिंग करें, आप बैठेंगे इंशाल्लाह, मीटिंग करेंगे। तो इस आजिज ने जब फिर प्लानिंग करनी शुरू करी तो लैपटॉप पे तो वैसे ही हर वो बैठे रहते थे, काम भी आईबीएम के लिए करते थे, तो लैपटॉप पे जो लिखना शुरू किया ना, तो लिखते गए हर एस्पेक्ट ऑफ द इज्तिमा, ठीक है। इतना मोटा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, और फिर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो मीटिंग्स कॉल कर रहे हैं, उसके ऊपर फॉलो अप कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं किया, ठीक है ना। इवन पार्किंग कैसे करेंगे लोग, और पार्किंग को मैनेज कैसे करेंगे, किसने पार्किंग इंतजाम करना है, किसने खाने का इंतजाम करना है, किसने जो है वो हजरत जी के रहने का इंतजाम करना है, खवातीन का इंतजाम किधर होना है, खवातीन का भी इज्तिमा करना था, वो दूसरी मस्जिद में होना था, दूर वाली मस्जिद में, आईसीसी मस्जिद कहते थे। बहुत कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो फिर मजे हो जाएंगे, मौजे हो जाएंगी, वरना हमारे के सारे, ठीक है ना। तो कबूलियत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में जब अजी से मीटिंग हुई ना, तो वो जो हमारे जो टीचर साहब थे, अजी के खलीफा डॉक्टर हुसैन साहब, तो कहते हैं कि अजी जी ये तो इज्तिमा काशिफ का इज्तिमा था, ये तो पूरा कब्रो इज्तिमा ही काशिफ, ठीक है। ये उनका जर्फ था, उनका जो है वो उन्होंने इस तरह से इज्जत दी। लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई इतना ज्यादा किसी चीज को मैनेज कर रहा होता है, कोई इतना ज्यादा जो है ना वो उसके यानी दिन और रात लगा रहा होता है ना, तो लोग कहना शुरू करते हैं कि ये तो गोया के इसी का था सब कुछ, इसी ने सब कुछ किया, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने हिजरत के मौके के ऊपर ऐसा ही रोल प्ले किया, हर चीज अबू बकर सिद्दीक से, इवन अबू बकर सिद्दीक उनके घर के अफराद, खाना कौन लेकर के आ रहा है, बेटी साहब लेकर के आ रही है, और जो है वो जासूसी कौन कर रहा है, अबू बकर सिद्दीक उनके खादिम साहब जो है वो जासूसी कर रहे हैं, और जो है वो मक्का मुकरमा की खबरें कौन लेकर के आए, अबू बकर सिद्दीक के जो बेटे साहब हैं वो मक्का मुकरमा की खबरें लेकर के आ रहे हैं, और कौन कर रहा है, यानी ऊंट जिसके ऊपर बैठ करके जा रहे हैं, ऊंट भी अबू बकर सिद्दीक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। और हत्ता के रास्ते में जहां पे रुक रहे हैं, तो वहां पर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के खाने पीने का इंतजाम अबू बकर सिद्दीक कर रहे हैं, है ना। नबी अलैहिस्सलाम के लिए दूध कौन लेकर के आ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक दूध लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। हत्ता के जो अल्टीमेट कल्मिनेशन ऑफ द सफर, जब सफर जो है वो मुकम्मल हो रहा है ना, तो उस वक्त क्या है कि अबू बकर सिद्दीक रतारन जो है वो जा रहे हैं, और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो पीछे हैं, तो लोग जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक रतारन को नबी अलैहिस्सलाम समझ करके, आका ये खुश आमदेद खुश आमदेद, ठीक है ना। तो अबू बकर सिद्दीक रतारन को नबी अलैहिस्सलाम समझना शुरू हो गए, ठीक है। हत्ता के जब अबू बकर, जब धूप हुई, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी चादर से नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर साया किया, तब लोगों को पता चला कि भाई अल्लाह के नबी ये नहीं थे, अल्लाह के नबी तो ये थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने खुद बताया भी नहीं कि भाई नबी अलैहिस्सलाम इतने थके हुए हैं, सारे लोग जाके मुसाफिर करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ होगी, तो उन्होंने बताया भी हो कि हाँ ठीक है सलाम कौन सा है कौन सा है कौन सा है, ठीक है। तो अगर वो धूप ना होती और साया ना करते, लोगों को पता भी नहीं चलता कि नबी अलैहिस्सलाम है कौन, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसको निस्बत इत्तेहादी कहते हैं। हमारे साथ भी एक दफा हुआ था, पहली मुलाकात हमारी हजरत के साथ हुई ना, तो वो भी ऐसे ही था कि लोगों ने कहा कि भाई हजरत जी आ गए, हजरत जी आ गए, तो हम जो है ना उस घर में भी डॉक्टर हुसैन साहब के वाले साहब के घर था, तो वहां पे दाखिल हुए ना, तो सामने जो है वो तीन हजरात बैठे हुए हैं, तो वो तीनों की तीनों एक जैसे तीनों वही सफेद इमामा, वही सफेद जुब्बा, वही जो है वो ऊपर से कोटी पहनी हुई, तो उनमें जो बीच में बैठा, हमने कहा यही होंगे हजरत जी उनसे जाके मुसाफिर क्या, बाद में लोगों ने ये नहीं है हजरत जी, ये तो कोई और है, हजरत जी के कोई खलीफा है, हजरत जी तो ऊपर है तो ऐसा होता है, ठीक है ना। कुछ लोग जो है ना, माफ कीजिएगा आरू भाई से 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, एक और बात याद आ गई, ये सुन्नत होती है ना, इसको कहते हैं फिना फिस शेर, फिना फिस सुन्नत, ठीक है। तो एक हमारे मुल्क के बराबर में दूसरा मुल्क है, तो वहां पर जो है ना वो सारी दुनिया से जो है ना वो लोग काफिरों से मुकाबला करने के लिए जमा हो जाते थे। तो एक दफा एक काफिर का हमने एक आर्टिकल पढ़ा, न्यूज रिपोर्टर था, तो उसने जो है ना वो उन लोगों के बारे में आर्टिकल लिखा था, तो उसने बड़ी मजे का एक जुमला लिखा, उसने जुमला लिखा कि ये जो लोग आए हुए ना यहाँ पे मुकाबला शुकाबला करने के लिए, इनमें से कोई अमेरिका से आया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, कोई यूरोप से आया हुआ है, कोई जो है वो सऊदी अरब से आया हुआ है, कोई जो है फलाने मुल्क से आया हुआ है, लेकिन सारे के सारे एक जैसे लगते हैं। यानी इनका लिबास भी एक होता है, ये खाने के लिए बैठते हैं तो एक ही तरीके से बैठते हैं, ये खाना खाते हैं तो एक ही तरीके से खाना खाते हैं, ये फलाना काम करते हैं तो एक ही तरीके, इनमें कोई फर्क ही नहीं, सारे के सारे एक जैसे हैं। वो बड़े ताज्जुब में बात दिख रहा था, मैंने पढ़ा तो मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं है ये एक जैसे सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इन सब का नबी एक है और ये इस एक ही शख्सियत की सुन्नतों को सारे के सारे फॉलो करने वाले हैं, इस वजह से सारे के सारे एक है, इनमें कोई फर्क ही नहीं होता, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में जब कोई नया बंदा आता था ना तो उसके साथ भी यही होता था, उसको समझ में नहीं आता था कि ये इतने सारे जो लोग बैठे हुए इनमें अल्लाह के रसूल कौन है। उसको पता ही नहीं चलता था कौन अल्लाह के नबी है, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम कोई ऐसे स्पेशल तरीके से उमूमन नहीं बैठते थे, वरना कभी जब खुतबे का वक्त होता था उस वक्त मेंबर पर बैठ जाते थे, अदरवाइज बस लोगों के साथ आम तरीके से बैठे हुए, ठीक है ना। तो लोगों से पूछता था कि भाई अल्लाह का नबी कौन है, तब लोग बताते ये है अल्लाह के नबी, तब उसको पता चलता है कि अल्लाह के नबी, ठीक है। अल्लाह ताला हमें भी सुन्नतों की ऐसी इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नफ्स को हमें फिना करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम हमारे अंदर भी अल्लाह के दीन की मदद करने की हिम्मत और हौसला पैदा हो जाए। वह आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह।